उपन्यास क्षेत्र में रजनी पन्नीकर, बसंत प्रभा, कृष्णा सोबती, चंद्र किरण सोनरक्षा, लीला अवस्थी तथा अन्नपूर्णा तांगड़ी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस दिशा में रजनी पन्नीकर की प्रतिभा सर्वाधिक विकासशील रही है। नारी जीवन के वर्तमान संघर्षों का चित्रण उनके उपन्यासों का प्रिय विषय है। कार्यशील महिलाओं की संघर्षपूर्ण जीवन स्थिति के युगानुरूप चित्रण में उन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की है। चंद किरण सोनरक्षा एवं बसंत प्रभा पारिवारिक जीवन के चित्रण एवं नारी के कोमल भावों के मनोवैज्ञानिक चित्रण में सफल रही हैं। कृष्णा सोबती की उपन्यास कला का उल्लेखनीय महत्व यह है कि उन्होंने अपनी विशिष्ट कलात्मक शैली में आंचलिक उपन्यास की रचना करके हिंदी लेखिकाओं द्वारा प्रणीत कथा साहित्य में एक खटकने वाले अभाव की पूर्ति की है। देश काल के चित्रण में स्थानीय रंग एवं आंचलिक स्पर्श देने की प्रवृत्ति इस युग की नई देन है। लेखकों में नागार्जुन तथा रेणु ने इस क्षेत्र में विशेष सफल प्रयोग किए हैं। पृष्ठ 55। इसी प्रकार लेखिकाओं में उस स्तर पर कृष्णा सोबती और शिवानी के नाम उल्लेखनीय है। समष्टि की अपेक्षा व्यष्टि की समस्याओं को महत्व देना इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। जैनेन्द्र, इला चंद्र जोशी और अज्ञेय ने अपने उपन्यासों में पात्रों के अव्यक्त चरित्र को मनोवैज्ञानिक पद्धति से अनावृत करके जिस नवीन शैली को जन्म दिया था, लेखिकाओं में मन्नू भंडारी एवं रजनी पन्नीकर का कथा साहित्य उनकी विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। अंतर केवल यह है कि जहां अधिकांश लेखकों ने यौन विकृतियों, काम प्रवृत्तियों और चरित्र स्खलनों को अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया है, वहां लेखिकाओं ने प्रायः उन्हें मानसिक सतह पर ही रखा है और आत्मपीड़न को ही व्यक्त किया है। सुषमा भाटी, मधुलिका मिश्र आदि कतिपय अपवाद स्वरूप लेखिकाओं ने वासना के नग्न चित्र भी अंकित किए हैं। मन्नू भंडारी की कुछ कहानियों में भी वैसे संकेत हैं, किंतु अस्पष्ट होने के कारण वे उतने विकृत प्रतीत नहीं होते। इस युग की लेखिकाओं में कहानी कला और उपन्यास कला का उन्नयन समान स्तर पर रहा है। सामाजिक उपन्यासों के अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे गए, किंतु प्रमुखता सामाजिक उपन्यासों की ही रही। इस काल की कुछ लेखिकाओं में भंडारी और भारती विद्यार्थी के उपन्यास इसी प्रकार है। स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य उत्तरोत्तर व्यक्त से अव्यक्त, आस्था से अनास्था, समाज से व्यक्ति, आदर्श से यथार्थ एवं सूक्ष्म से स्थूल की ओर प्रवृत्त होता रहा है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शिल्प की दृष्टि से भी अनेक प्रयोग सम्मुख आए। रजनी पन्नीकर, मन्नू भंडारी, प्रकाशवती ने अपने उपन्यास नूतन शैली में प्रस्तुत किए हैं। पात्रों के आत्मविश्लेषण को ही केंद्र बनाया गया है। वस्तुतः लेखिकाओं ने हिंदी कथा साहित्य को अपनी संवेदनशील भावनाओं एवं जागरूक प्रतिभा का आश्रय देकर पर्याप्त गौरवान्वित किया है। नारी हृदय का जितना सफल चित्रण महिला कथाकार कर सकी है, उतना पुरुष लेखक नहीं। इसके अतिरिक्त गृहस्थ जीवन, बाल मनोविज्ञान, सौतिया डाह आदि ऐसे विषय हैं जिन्हें लेकर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने अधिक सजीव कहानियों की रचना की है। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक कोण से पुरुष लेखकों का कथा साहित्य कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे क्षेत्र अनेक हैं जहां लेखिकाओं का पक्ष अपेक्षाकृत दुर्बल है। उदाहरणार्थ, लेखिकाएं केवल सामाजिक कथा क्षेत्र में गतिशील रही हैं, यह भी एक सीमा है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों का उन्होंने कहीं कहीं स्पर्श मात्र ही किया है। जिस प्रकार वृंदा लाल वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने शोधपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास प्रस्तुत किए, वैसा लेखिकाएं नहीं कर सकी। उमा देवी, सुदेश, रश्मि आदि के एकाध अपवाद स्वरूप नाम लिए भी जा सकते हैं, तो भी हमें यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि उनके ऐतिहासिक उपन्यास उतने उच्च स्तर के नहीं हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के क्षेत्र में अज्ञेय, जैनेन्द्र और इला चंद्र जोशी की कला को लेखिकाओं ने उस रूप में नहीं अपनाया है, किंतु यह असंदिग्ध है कि नारी मनोविज्ञान को वाणी देने में अनेक लेखिकाएं पुरुषों से आगे हैं। पृष्ठ 56। आंचलिक उपन्यासों के क्षेत्र में केवल तीन नाम लिए जा सकते हैं, भारती विद्यार्थी, कृष्णा सोबती और शिवानी। यह अभाव क्यों है? इसका कारण स्पष्ट है, वह यह कि पुरुषों पर सामाजिक बंधन उस रूप में कभी हावी नहीं रहे जिस रूप में महिलाओं को उन्होंने बाधित किया है। प्रस्तुत तथ्य के समर्थन में श्री रघुवंश लाल के हिंदी साहित्य और स्त्रियां शीर्षक लेख से उद्धृत अधोलिखित पंक्तियां अवलोकनीय हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। स्त्री कवियों की तुलना पुरुषों से करनी अनुचित ही नहीं अविवेकपूर्ण भी है। कारण स्पष्ट है, पुरुषों को सदा से अपनी मानसिक शक्तियों के विकास का अवसर मिलता आया है, कम से कम स्त्रियों से अधिक। वे पर्दे की शिकार नहीं रहे, उन्हें पुस्तकें पढ़ने का और लिखने का अच्छा सहयोग मिलता रहा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ जो कुछ कवियों के लिए कहा गया है वही कथा लेखन के क्षेत्र में भी सत्य है। इसका एक अन्य प्रमाण यह है कि प्रेमचंद युग के आरंभ तक स्त्रियों पर नैतिक बंधन बहुत हावी थे, अतः उन्होंने जो साहित्य लिखा वह परिमाण एवं कथाशिल्प दोनों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था। इसके बाद जो जो नैतिक पूर्वाग्रह शिथिल होते गए त्यों त्यों लेखिकाएं अपनी प्रतिभा को विकसित करती गई। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, कमला शांति मेहरोत्रा, रजनी पन्निकर आदि अनेक लेखिकाएं ऐसी हैं जिन पर हिंदी कथा साहित्य को गर्व हो सकता है। वर्तमान काल में नारी को स्वतंत्र चिंतन की परिस्थितियां सुलभ हुई हैं तो निश्चय ही अभावों की पूर्ति होगी। आवश्यकता केवल इस बात की है कि विषयों से बाहर जाकर विज्ञान, राजनीति, समाजशास्त्र आदि अन्य विषयों को भी कथा साहित्य में व्यापकता से अपनाएं। लेखिकाओं की वर्तमान प्रगतिशील चेतना को देखते हुए निःसंकोच यह कहा जा सकता है कि हिंदी कथा साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। स्वातंत्र्योत्तर युग की लेखिकाओं ने मुख्य रूप से समाज एवं परिवार को केंद्र बनाकर प्रेममूलक उपन्यासों की रचना की है। उन्होंने कहीं घटना, संयोग या चारित्रिक दृढ़ता का आधार लेकर प्रेम संबंधों को सफलता में परिणित कर दिया और कहीं सामाजिक संकीर्णता, वर्ग भेद, वर्ण भेद आदि बाधाओं को सर्वजयी दिखाकर निराशा में कृतियों का उपसंहार किया है। इन उपन्यासों में मध्यवर्गीय परिवारों की सामयिक समस्याओं को विशेष रूप से उभारा गया है। विशेषता यह है कि जहां पूर्ववर्ती उपन्यास लेखिकाओं ने समाज को केंद्र मानकर व्यक्ति की अनुभूतियों का चित्रण किया था, वहां इस युग में व्यक्ति को प्रमुख मानकर उसके परिवेश को गौण रूप में चित्रित किया गया है। हाँ, लेखिकाओं ने नारी होने के नाते नारी के अंतःकरण की अभिव्यक्ति एवं नारी की समस्याओं की चित्रण पर ही अधिक बल दिया है। कुछ लेखिकाओं ने तो इस दिशा में रूढ़ी प्राप्त प्रवृत्तियों को ही अपना लिया है। उदाहरणार्थ सत्यवती उषा ने क्षितिज के पार में हिंदू विधवा की पारिवारिक एवं सामाजिक दुर्दशा का चित्रण किया है। इसी प्रकार सुषमा भाटी के गेटकीपर तथा मधुलिका के प्राणों की प्यास में वैश्या जीवन की विभीषिकाओं का चित्रण प्रमुख विषय है। कतिपय अन्य लेखिकाओं ने नारी की वर्तमान समस्याओं की ओर ध्यान देकर युगानुरूप सजगता का परिचय दिया है। उदाहरणार्थ पृष्ठ 57, मीरा महादेवन ने सो क्या जाने पीर पराई में अभावग्रस्त निम्न वर्गीय परिवार की कन्या को केंद्र बनाकर नौकरी करने वाली नारी के मार्ग में आने वाले विभिन्न प्रलोभनों एवं बाधाओं का यथार्थ चित्रांकन किया है। उषा प्रियमदा ने भी 55 खंभे लाल दीवारे में ऐसे ही अभावग्रस्त परिवार की कॉलेज में नौकरी करने वाली कन्या की मानसिक शून्यता एवं हलचल का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इस सामाजिक उपन्यास में कुंवर रानी तारा देवी का जीवन दान एक श्रेष्ठ उपन्यास है। यद्यपि इसमें भी प्रेम कथा को स्थान दिया गया है किंतु इसके प्रस्तुतिकरण में लेखिका ने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों की चर्चा करते हुए उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों की प्रशंसा की है और भारतीय समाज के सुधार पर बल दिया है। सामाजिक उपन्यासों के अतिरिक्त इस युग में श्रीमती सुदेश रश्मि ने एक ही रास्ता तथा उमा देवी ने आलिंगन शीर्षक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। इसमें सुदेश रश्मि का उपन्यास शुद्ध रूप से ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें देश और काल के संदर्भ में नवाब सरफराज अलवर्दी, कासिम आदि पात्र ऐतिहासिक हैं। उमा देवी के उपन्यास में इब्राहिम लोदी, बाबर आदि गौण पात्रों एवं घटनाओं के अतिरिक्त प्रमुख पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इस कृति को ऐतिहासिक प्रेमाख्यान उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है।